आज है 16 मई दिन सोमवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। कांग्रेस ने लगाया आरोप, मालेगांव धमाकों में आरोपियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है हस्तक्षेप।
क्योंकि इसमें जांच हो चुकी थी, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, उसके बाद इसको रिवर्स किया जा रहा है और वो भी हस्तक्षेप सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर।
तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आज होगा चुनाव, क्यों हो रही है जल्लीकट्टू पर राजनीति? केरल में राजनीतिक हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत, क्या है कारण?
मुंडे का नीचे मारा पाइप से, तो ये जो हड्डी है ना, ये टूट गया, वो हाथ से पकड़ गया, ऐसे घुमा दिया और हाथ पैर दोनों का हड्डी पूरा पाइप से टूट गया।
उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर होगा उपचुनाव, ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाकों की जांच और एएनआई के साथ भी प्रज्ञा को क्लीन चिट देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने दखल दिया है। कांग्रेस ने एक चिट्ठी का हवाला देकर कहा कि कर्नल पुरोहित की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें पुरोहित ने डोवाल से गुजारिश की थी कि एनआईए की ओर से अंतिम चार्जशीट दाखिल होने से पहले वो मामले में दखल दें। भाजपा ने इस चिट्ठी की प्रामाणिकता पर अब तक कोई सवाल नहीं उठाया है। नेपाल में नए संविधान के विरोध में अल्पसंख्यक मधेसी समुदाय के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में पुलिस और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस नाके को तोड़कर सरकारी इमारतों और संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन दंगारोधी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मधेसी नए संविधान का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें अधिकार और सत्ता में हिस्सेदारी मिले। मधेसियों के नेता अनिल झा ने बताया,
जारी संविधानलाई इनरिच गर्नको लागि जारी संविधान सबैको संविधान हुन सकोस्, त्यसको
हम मधेसियों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ हैं ताकि हम मांग कर सकें कि देश के संविधान में बदलाव किए जाएं और इन समूहों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाए। यह एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो सभी को सुरक्षा प्रदान करे। ये थे मधेसियों के नेता अनिल झा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की पुलिस ने एक संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथी को समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी के मुताबिक इस हत्या को हाल के दिनों में बढ़ते बुद्धिजीवियों, लेखकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में समलैंगिकों और लेस्बियन के लिए प्रकाशित होने वाली मैगजीन के संपादक जुलहास मन्नान और कार्यकर्ता महबूब तोनोए की पिछले महीने ढाका के एक अपार्टमेंट में 6 बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। यमन में इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के एक सदस्य ने आत्मघाती बम धमाका किया है। हमले में पुलिस के 31 नए सिपाही मारे गए हैं। यह आत्मघाती बम हमला देश के दक्षिणी बंदरगाह के पास हुआ, जिसे पिछले महीने ही सरकारी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। यह इलाका पहले अलकायदा के कब्जे में था। मेडिकल सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि धमाके में करीब 60 लोग भी घायल हुए हैं। इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग का खिताब ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे ने अपने नाम कर लिया है। रोम में चल रहे इस टूर्नामेंट के फाइनल में कल एंडी मरे ने शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में मात दी। उधर इसी टूर्नामेंट में भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने रूस की 7वीं वरीयता प्राप्त एकाटेरिना माकारोवा और एलिना वेस्नीना को 6-1, 6-7, 10-3 से हराकर महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही इस मामले में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल पुरोहित की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को लिखी चिट्ठी भी दिखाई। एनआईए ने शुक्रवार को इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और मालेगांव मामले में आरोपियों की सूची से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 अन्य के नाम निकाल दिए थे। सभी आरोपियों पर से कड़े कानून मकोका के चार्ज हटा दिए गए, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का नाम भी शामिल था। पूरे ब्यौरे के साथ निखिल रंजन।
मालेगांव बम धमाके के आरोपियों के खिलाफ आरोप पलट जाने के बाद रविवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर इस मामले में दखल देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और आरपीएन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी भी दिखाई। इस चिट्ठी को आरोपियों में शामिल कर्नल पुरोहित का बताया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नाम लिखी गई है। चिट्ठी में कर्नल पुरोहित ने अजीत डोवाल से कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। इस चिट्ठी का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार की दखल के बाद ही एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ सबूत न होने की बात कही है। आरपीएन सिंह
जो केस में ऐसे टेरर केसेस में जेल में बंद है, आरोप उन पर सिद्ध होने के नजदीक हो कि वो एनएसए को पत्र लिखते हैं कि अब तक मैं कुछ नहीं बोला, आपसे हमें उम्मीद था कि आप हमारी मदद करेंगे, और एनएसए उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करके गृह मंत्रालय को भेजते हैं।
कर्नल पुरोहित की इस कथित चिट्ठी पर अजीत डोभाल के दस्तखत हैं और इसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय तक पहुँचने का ब्यौरा भी इस पर दर्ज है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जितनी तेजी से इस चिट्ठी पर कार्रवाई हुई है उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती,
क्योंकि इसमें जांच पुख्ता हो चुकी थी, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, उसके बाद इसको रिवर्स किया जा रहा है और वो भी हस्तक्षेप सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर। 6 जनवरी को चिट्ठी मिलती है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को श्री डोवल को, 8 तारीख को गृह मंत्रालय पहुंच जाती है, 9 तारीख से गृह मंत्रालय का उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैंने इतनी तेजी से तो आज वो 100 मीटर का कौन चैंपियन है दुनिया में,
बोल्ट
वो बोल्ट भाग सकता है, सरकार की फाइल इतनी तेजी से नहीं भागती जैसे ये भागी है।
कांग्रेस पार्टी ने जिस चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया वो कुछ दिन पहले सार्वजनिक हुई थी। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस चिट्ठी की वास्तविकता पर ना तो सवाल उठाए हैं ना ही कोई जवाब दिया है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने इतना जरूर कहा है कि एनआईए अपनी रिपोर्ट अदालत में रखेगी।
एनआईए अगर कोई बदलाव करता है तो वो कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि वो बदलाव सही है या गलत है। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि कोर्ट्स अपना काम निष्पक्ष रूप से करते नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि कोर्ट्स में उनको विश्वास नहीं है?
मालेगांव धमाकों के सिलसिले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी बनाया था। बाद में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में इनके खिलाफ पक्के सबूत न होने की बात कही है।
ये थे निखिल रंजन। और अब बात विधानसभा चुनाव की। करीब 2 महीने तक चिलचिलाती गर्मी में चले लंबे चुनावी प्रचार के बाद आज तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान होगा, जहां मैदान में एआईएडीएमके, डीएमके, पीडब्ल्यूएफ, डीएमडीए, डीके, टीएमसी गठबंधन, बीजेपी और पीएम के उपके उम्मीदवार हैं। वहीं मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी एआईडीएमके के सत्ता में फिर से आने की उम्मीद जता रही है। हालांकि हाल के दशकों में राज्य में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। उधर बीजेपी ये आस लगा रही है कि वो इस बार पैर जमाने में वहां सफल रहेगी। सीधे चलते हैं चेन्नई बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, ये बताइए कि अब से बस कुछ ही मिनटों बाद वहां पर जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, मुकाबला तो कड़ा नजर आ रहा है।
बिल्कुल सुशीला, मुकाबला बहुत कड़ा है और जो जिस तरह से मुझे मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है वो अभी हम लोग अपनी पिछले पैकेज में बात हो रही थी, उसेन बोल्ट का जिक्र आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जो प्रमुख उम्मीदवार हैं जयललिता और डीएमके के करुणानिधि, वो उसेन बोल्ट को आज याद करना चाह रहे होंगे और चाह रहे होंगे उसी रफ्तार से उनको वोट मिले। इस वक्त मैं यादवार पेरावाई रोया पेटा करके एक जगह है, यहाँ पर हूँ और मैं अभी से देख रहा हूँ कि काफी गहमा गहमी है पोलिंग स्टेशन से, जो कि प्रायः इतनी सुबह इतनी जल्दी कम होती है जब हम उत्तर में चुनाव कवर करते हैं। लेकिन ये बात साफ है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें 78% के आसपास मतदान हुआ था, जो कि तमिलनाडु की राजनीति में एक इतिहास था। हालांकि जयललिता ने उस समय स्वीप किया था, लेकिन इस वक्त जो है ये पिछले 25 साल से जो एक पार्टी का जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतना होता है हर दूसरे चुनाव में, वो शायद लोग कह रहे हैं इस बार वो चैलेंज हो और जो 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 नतीजे होंगे वो शायद पहली बार बहुत करीब हो सकते हैं।
जी, तो आप नज़र बनाए रखिए नितिन, क्योंकि आपके पास अपडेट के लिए अगले कार्यक्रम में भी आएंगे। और अब बात ऐसे खेल की जिस पर राज्य में राजनीति हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में जलीकट्टू का खेल प्राचीन काल से खेला जाता रहा है। इस खेल में सैकड़ों सांड हिस्सा लेते हैं, लेकिन 2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद इस पर राजनीति तो हो ही रही है, साथ ही सांड भी बेकार बैठे हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने तमिलनाडु के मदुरई जिले में वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाना बताएं कि ये खेल इतना लोकप्रिय क्यों है।
मदुरई के रंजीत मणि के पास 3 सांड है जो खास तौर से तमिलनाडु के पारंपरिक त्योहार पोंगल के दौरान सांडों को काबू करने वाले जल्लीकट्टू खेल में भाग लेते थे। पिछले 2 वर्षों से रंजीत के सांड खाली बैठे रहते हैं क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी।
नाउ डेली वी आर स्पेंड 1,000 rupees फॉर माय कैरिंग माय बुल्स। I have three bulls, so daily 1,000 rupees.
रंजीत बता रहे थे कि उनके 3 सांडों के खाने और रखरखाव पर रोज 1,000 rupees का खर्च आता है, यानी महीने का लगभग 30,000, और वे खाली बैठे रहते हैं। अब तो जल्लीकट्टू का खेल भी नहीं रहा उनके लिए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का दौर है और सभी राजनीतिक दल जल्लीकट्टू का खेल दोबारा शुरू कराने की मुहिम चलाने के नाम पर मतदाताओं के पास गए। सत्ताधारी AIDMK, विपक्षी DMK और भाजपा तक ने अपने मैनिफेस्टो में इस खेल को शुरू कराने की कानूनी लड़ाई जारी रखने का वादा किया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले 2 साल से पाबंदी थी क्योंकि कई संगठनों ने खेल के दौरान जानवरों पर होने वाले कथित अत्याचार की गुहार लगाई थी। लेकिन रंजीत का कहना है कि ये आरोप गलत हैं।
How can I am cruelty for my child?
रंजीत कह रहे थे कि मैं अपने बच्चे के लिए क्रूर कैसे हो सकता हूँ। हम लोग इन सांडों को बच्चे की तरह पालते हैं और ऐसा ही इलाके के कुछ ऐसे लोग भी करते हैं जो वाकई में गरीब भी हैं। 2016 में 8 जनवरी को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कुछ नियमों के साथ इस खेल पर लगी पाबंदी हटा दी थी। इस अधिसूचना के खिलाफ भारत पशु कल्याण समिति, People for the Ethical Treatment of Animals यानी PETA और बेंगलोर की एक गैर सरकारी संस्था की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इधर तमिलनाडु के कम 10 जिलों में भावनाओं के साथ साथ जल्लीकट्टू से जुड़े व्यवसाय पर भी असर दिखता है। जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले 5 सांडों के मालिक मुदक्थन मणि इनके प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं।
தடையை போட்டு எங்களுடைய அடக்குமுறையை அடக்கி தமிழ்நாட்டுடைய பாரம்பரிய வீர விளையாட்டை வந்து ஒரு அடக்குமுறை
தமிழ்நாடுக்கு பரம்பரா அம்பி மேபி கரெக்டே ஆறாம் 14 மே கரெக்டே ஆறாம் அவர் அபி ஏ ரோக்கேபாத் ஐசா லக்தா கி புரா அமாரா பாரம்பரிய ஊப்பர் ஏ முதா உட்டா கயா ஹை।
मदुरई जिले में पलामेडू और अलंगनल्लूर गांवों में होने वाला जल्लीकट्टू काफी लोकप्रिय रहा है और यहां सालाना सांडों की इस दौड़ में करीब 600 सांड भाग लेते थे। इस खेल को देखने करीब 2 से 3 लाख लोग भी पहुंचते थे और इलाके में कारोबार इसी पर टिका था। नम आंखों से रंजीत उस दौर को याद करते हैं।
2 years before they are no one was focusing the jallikattu but right now each and every party
2 वर्ष पहले किसी भी राजनीतिक दल ने जल्लीकट्टू के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया था। कोई फायदा नहीं होगा इस सब को करके, कहा रंजीत ने। तमिलनाडु में जानकारों का मानना है कि सांडों के इस पारंपरिक खेल पर राजनीति ज्यादा हुई और हर दल इसके जरिए प्रदेश की धरोहर को दोबारा शुरू कराने का दम भर रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, BBC मदुरई।
तमिलनाडु से निकलकर अब चलते हैं केरल, जहां 140 सीटों पर आज मतदान होगा। यहां LDF इस बार जीत की उम्मीद लगाए है क्योंकि यहां यह देखा गया है कि हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन मुख्यमंत्री उमन चांडी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को ठीक से ना चला पाने के आरोप लगे हैं, वो इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि वह राज्य में फिर से सत्ता में काबिज होकर आएंगे और इतिहास को बदल देंगे। सीधे चलते हैं कोची दिव्या आर्या के पास। दिव्या, ये बताइए कि तमिलनाडु में जिस तरह की आप सुन रही थी नितिन श्रीवास्तव, तो बता रहे थे कि काफी उत्साह है, वहां पर किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में?
सुशीला, यहाँ पर केरल में आकर लगा कि जैसे चुनाव हो रहे हैं। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे पोस्टर और बहुत सारा जुनून लोगों में देखने को मिला। बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट केरल को कहा जाता था और इस बार मैंने अपनी आंखों से देखा भी। कैंपेनिंग के आखिरी दिन बहुत बल प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। और जहां तक कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी की बात है, तो कांटे की टक्कर है। और UDF का ये कहना कि वो दोबारा आएंगे और इतिहास बदलेंगे, उसके पीछे मोटी वजह ये है कि इस बार कहा जा रहा है कि पहली बार BJP ने बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार स्टेट में आए और BJP का जो वोट बेस है, वो जिन लोगों को चुराएगा, अपनी ओर करेगा, वो दरअसल LDF के, यानी कि जो वाम दल का गठबंधन है जो इस वक्त विपक्ष में है, वही सपोर्ट बेस माना जाता है, जिसमें जो कि लार्जली ज्यादा हिंदुओं का बना हुआ सपोर्ट बेस है, माना जा रहा है कि बीजेपी को जो वोट मिलेंगे वो सपोर्ट बेस में से आएंगे। तो इसलिए नहीं कि बीजेपी को बहुत सीटें मिलने की उम्मीद है, बीजेपी के पास आज तक कोई सीट नहीं रही है ना विधानसभा में ना लोकसभा में, उम्मीद है उन्हें कि एक या दो सीटें, उससे ज्यादा आई तो सब लोग बहुत हैरान होंगे। तो बीजेपी सीटों के मामले में नहीं पर वोटों के मामले में यहाँ पे उलटफेर कर सकता है, और उसी के बल पे यूडीएफ का कहना है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों के खिलाफ होने के बावजूद वो इस बार दोबारा सत्ता में आ सकते हैं।
जी दिव्या, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास अगले कार्यक्रम में भी आएंगे। इधर केरल के चुनाव में बीजेपी बड़ी दमखम से उतरी है, जैसा कि दिव्या आर्या अभी आपको बता भी रही थी। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वामपंथी पार्टियों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह जो पिछले दशकों में उभरी है वो है हिंसा की। इस हिंसा की चपेट में आकर अब तक कम से कम 100 लोगों की हत्या हो चुकी है। हमारी सहयोगी दिव्या आर्या ने केरल में इन राजनीतिक हिंसा की वजहों और गंभीरता का जायजा लिया।
वो जो तार से बांधा हुआ ना,
उसमें
से आधा आदमी लोग उधर ही खड़ा है, तो बाकी पीछे ही खड़ा है। अच्छा। ये जो बाहर आया ना, वो दोनों साइड से आदमी लोग मिला के इनको मार दिया।
इसी साल 15 फरवरी को 26 साल के सुजीत की उनके घर के बाहर उनकी माँ बाप की आंखों के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सुजीत आरएसएस के वर्कर थे और उनकी हत्या के आरोप में सीपीएम के 6 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। उस रात को याद कर उनकी मां सुलोचना अब भी रो पड़ती हैं।
मुंडे का नीचे मारा पैर से, तो ये जो हड्डी है ना ये टूट गया, वो हाथ से पकड़ गया ऐसा घुमा लिया, पर दांत पूरा नीचे गिरा है और हाथ पैर दोनों का हड्डी पूरा पाइप से तोड़ गए, तो नीचे गिर गया। वो जाकर बुलाया, माँ ने जाकर बुलाया, तब पूरा ब्लड।
केरल का कन्नूर ये उन्हीं इलाकों में से एक है जहाँ से कम्युनिस्ट आंदोलन के पहले नेता उभरे। यहाँ सीपीएम की जड़ें बहुत मजबूत हैं और आरएसएस के इन जड़ों पर चोट करने की कोशिशों का जवाब ये हत्याओं का सिलसिला है। सुलोचना और उनके पति भी लंबे समय से सीपीएम के समर्थक थे, पर उनके बेटे ने आरएसएस को चुना।
कभी नहीं करा
सीपीएम को
कभी नहीं करेगा, बाकी
सीपीएम को कभी वोट नहीं करेगा,
कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना बेकार पार्टी है, बेकार पार्टी हो गया अभी।
पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा से अलग केरल में ये हमले बहुत सुनियोजित तरीके से हफ्तों या महीनों की तैयारी के साथ किसी एक आदमी को मारने की नीयत से किए जाते हैं। पर सीपीएम या बीजेपी नेता भी खुले तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसे एक हमले के बाद दिए बयान में कहा था कि आरएसएस बीजेपी के बहुत से वर्कर्स को सीपीएम ने मार डाला है, पर उस हिंसा का जवाब वो वोट से देंगे। पर राजनीतिक हत्या के बदले में जवाबी हत्या केरल की सच्चाई है। उत्तरी केरल में सीपीएम का वर्चस्व ऐसा है कि कई गांवों को पार्टी विलेज कहा जाता है। अब इन्हीं में आरएसएस की शाखाएं चलने लगी हैं।
फेस्टिवल उधर जाके मैं घर वापस जाता।
अच्छा। हाँ,
उस समय 10-15 आदमी, 5-10 आदमी, तलवार और कोडवाल को क्या बोलता था मुझे मालूम।
सीपीएम के पी सुरेंद्र 27 साल के थे जब 1986 में उन पर तलवारों से लैस आरएसएस के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। जान बच गई, पर 2 साल तक इलाज चला। पैर में लगी गहरी चोट और कान के कट जाने से पुलिस की नौकरी का सपना भी छूट गया। वो कहते हैं कि मुझ पर हमला करने वालों में जो प्रमुख था वो कुछ समय बाद एक हमले में मारा गया, क्योंकि मेरे बाद उसने सीपीएम पर 2 और हमले भी किए थे। करीब 4 दशक से केरल में इन हमलों का सिलसिला चुनाव से पहले तेजी पकड़ लेता है। जगह जगह मारे गए पार्टी वर्कर्स के लिए स्मारक तक बनाए गए हैं। इन्हें हीरो या शहीद की तरह पेश कर दोनों ओर के क्रोध और जुनून को बरकरार रखा जाता है। साल 2012 में सीपीएम के नेता रहे टीपी चंद्रशेखरन की काट काट कर की गई बर्बर हत्या इस सिलसिले की कड़ी बन सकती थी। फर्क इतना कि इस बार हत्या भी सीपीएम की तरफ से की गई थी। वजह यह कि चंद्रशेखरन ने पार्टी की नीतियों की आलोचना कर एक दूसरी पार्टी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी बना ली थी। उनकी पत्नी रमा के बताती हैं,
അല്ല അവൻ ഇതൊക്കെ എതിരാണ്, പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
रमा कहती है कि शुरू में मेरा बेटा बहुत आवेग में था, उसे बदला लेना था, पर फिर वो समझ गया कि इसका कोई अंत नहीं है, इसी सोच के साथ अब मैं सीपीएम के ही खिलाफ चुनाव लड़ रही हूँ। अब बेटा अभिनंत भी आशावान हो चला है, कहता है क्रांति आएगी, आप देखिएगा पूरे देश में छात्र आवाज उठा रहे हैं। पर बदलाव कितना मुश्किल है ये इस बात से जाहिर हो जाता है कि पिछले आम चुनाव तक केरल के कई पार्टी विलेजेस में मतदाताओं को अपना वोट दिखा कर डालना पड़ता था। हालांकि बीजेपी ने अभी तक केरल में कोई चुनावी जीत नहीं हासिल की, विश्लेषकों के मुताबिक उसकी तरफ मुड़ने वाले जो भी थोड़े लोग हैं वो सीपीएम से ही टूट रहे हैं। आखिर में सुजीत के दोस्त वीनू कहते हैं कि बदले की हत्याओं का ये सिलसिला अभी तो नहीं थमेगा।
ये थी दिव्या आर्या की रिपोर्ट। उधर केरल में राजनीतिक हिंसा से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होगा। भारत में जहां चुनाव के दौरान उम्मीदवार अपने वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, राजनीतिक हिंसा होती है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव के वक्त कैसा माहौल होता है, सुनते हैं वसुतुल्ला की ये डायरी।
क्या समझते हैं, तमिलनाडु बस इंडिया में ही है जहां चुनाव का मौसम आते ही वादों का मॉनसून आ जाता है। सस्ते चावल ले लो, मुफ्त टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन विद 3G 4G, मुफ्त बिजली, कुंवारियों के लिए एक एक तोला सोना, लैपटॉप, मोटरसाइकिलें, स्कूल यूनिफॉर्म, सब ले लो, बस हमें वोट दे दो। इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा ये हम जाने, तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो। सोचो अगर ये सब कुछ हम तुम्हें मुफ्त में दे सकते हैं तो खुद हम कितना कमाते होंगे। अगले चुनाव में इससे भी ज्यादा बांटेंगे। इसी का नाम है लोकतंत्र, जियो और जीने दो, आप खाओ हमें भी खिलाओ इत्यादि इत्यादि। अगर आप समझते हैं कि तमिलनाडु बस इंडिया में है तो आप कितने भोले हैं। जहां जहां लोकतंत्र का बाजा बज रहा है वहां वहां तमिलनाडु है। यकीन नहीं आता तो सीमा पार हमारे यहां तशरीफ लाइए। चुनाव अभी 2 साल दूर हैं पर लगता है कल ही होने वाले हैं। जनता पूछती है भाई साहब ऑफशोर कंपनियों का हिसाब दो, नवाज शरीफ कहते हैं लो तुम्हें एयरपोर्ट दिया, बन्नू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अपोजिशन पूछती है पनामा पेपर्स में जो कंपनियां आपके बच्चों से जोड़ी गई हैं उनमें पैसा कहाँ से आया, वो कहते हैं आपसे मतलब, आपको मानसेरा और एबटाबाद के विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, चलो 10000 करोड़ दिया। लैपटॉप, तुम्हारे कुत्तों के लिए भी लैपटॉप, ये पकड़ो मोटरवे, ये लो फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, और ये लो नवाज शरीफ रोजगार योजना, और ये और पकड़ो नवाज शरीफ स्मॉल लोन स्कीम, हो गई तुम्हारी तसल्ली। मगर हुजूर इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, आप तो खुद IMF से $500 मिलियन की अगली किस्त लेने के लिए वॉशिंगटन के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। फिर वही जाहिलों वाली बात, हम तुमसे वोट थोड़ा मांग रहे हैं, चुनाव तो अभी 2 साल दूर है भाई। लेकिन हुजूर ये जो आप मेरा मुंह बंद करने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं, इसे चार्ज करने के लिए बिजली कब देंगे। बस जैसे ही चुनाव घोषित होंगे हम बिजली भी मुफ्त कर देंगे, इतनी बिजली होगी कि संभाली नहीं जाएगी। और ये जो आपने हमारे शहर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल कर दिया है तो यहाँ तो कोई विमान भूले से भी नहीं उतरता। इससे तो अच्छा था आप हमें पीने का साफ पानी दे दें, मुफ्त तालीम दे दें, एक अच्छा सा अस्पताल बनवा दें कि दूर ना जाना पड़े। ज्यादा शाने बनने की कोशिश मत करो, वो काम कहो जो अगले चुनाव से पहले मुकम्मल हो जाएं ताकि हम उनका फीता काट के तुमसे ही तालियां पिटवा सकें। ये स्कूल विस्कूल अस्पताल सब फजूल की बातें हैं। पिछली सरकारों ने स्कूल और अस्पताल के नाम पे इतने ढांचे बनवाए, इनमें से कितने स्कूलों में टीचर्स आए और कितने अस्पतालों में डॉक्टर लगाए गए। अगर तुम फिर भी चाहते हो कि हम एक और ढांचा खड़ा कर दें तो कर देते हैं, हमारे बाप का क्या जाता है, पैसा तो तुम्हारा ही है जो तुम पे भी लग रहा है और तुमसे ज्यादा हम पे। तुम वोटर हो, वोटर ही रहो। लगाओ मेरे साथ नारा, लोकतंत्र की जय, पनामा पेपर्स की साजिश हाय हाय, पाकिस्तान जिंदाबाद, तमिलनाडु जिंदाबाद।
ये थी वसुतुल्ला खान की डायरी। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह से। उत्तर प्रदेश में आज मुरादाबाद जिले की बेल्लारी और गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
पिछले दिनों राज्य विधानसभा की 3 सीटों देवबंद, मुजफ्फरनगर सदर और बीकापुर में उपचुनाव हुए थे। ये तीनों सीटें उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कब्जे में थीं, लेकिन उपचुनाव में सपा 3 में से सिर्फ बीकापुर की 1 सीट ही बचा पाई थी। 1 सीट भाजपा ने तो 1 कांग्रेस ने हथिया ली थी। ये महासंयोग ही है कि आज जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो भी सपा के ही कब्जे में थीं, और इन पर प्रमुख दावेदार भी इन्हीं 3 पार्टियों के हैं। बसपा ने पिछली बार भी और इस बार भी उपचुनाव से दूरी बनाई हुई है। दरअसल इन उपचुनाव को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें भी राजनीतिक दलों का रुझान बेलारी सीट पर कुछ ज्यादा ही है। हालांकि भाजपा और सपा दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
नहीं नहीं काजीपुर की सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए, सबसे पहले माननीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी जाके व्यवस्थाओं के बारे में बैठक की, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, मंत्री के रूप में मनोज सिन्हा जी लगातार वहां पर काम की है, तो दोनों सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उन दोनों सीटों पर जो कार्यकर्ता है वो बड़ी शिद्दत से लगे हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को हमने उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद है कि जनता हम पर भरोसा करेगी।
समाजवादी पार्टी भी दोनों सीटों पर जीत का दम भर रही है। जानकारों का कहना है कि ये उपचुनाव खासतौर पर सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे मतदाताओं का रुझान पता चलेगा। सपा ने बिलारी सीट को बरकरार रखने के लिए 10-12 मंत्रियों की फौज लगा रखी थी। इस ताबड़तोड़ प्रचार अभियान पर सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
समाजवादी पार्टी जीतने वाली है और फौज पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं चुनाव में, फौज कहाँ है यहाँ हमारे पास, हम ऐसे जाते हैं कार्यकर्ता और वो मिनिस्टर और एमएलए भी कार्यकर्ता ही होते हैं पार्टी के, वो सब जाते हैं, हर चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
वहीं भाजपा ने मुजफ्फरनगर की तरह इस सीट पर भी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और संगठन से जुड़े अनुभवी कार्यकर्ताओं को लगा दिया था। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
समाजवादी पार्टी को एक संदेश देना है कि उसका जनाधार अभी गया नहीं है। हालांकि दोनों सीटें सपा की थी, दोनों विधायकों की निधन के बाद सीटें खाली हुई हैं, तो हम मृतक आश्रित उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, सिंपैथी थोड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, 265 प्लस का लक्ष्य रख के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद खासतौर से बिलारी पे फोकस ज्यादा कर रही है कि पश्चिम से संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी सपा को हराने में सक्षम है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा नहीं है और कांग्रेस पार्टी अभी तमाशा देख रही है, असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच।
सपा और भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी अपनी ताकत आजमा रही है। बसपा की तो रणनीति ही उपचुनाव से दूर रहने की है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ये उपचुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव के रिहर्सल भले ही न हो, लेकिन मतदाताओं का रुझान क्या है इसके संकेत तो मिलेंगे ही। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब मानसी दास स्टूडियो आ चुकी है समाचार पत्रों के साथ। मानसी, आज क्या है समाचार पत्रों की समीक्षा?
सुशीला जी, दिल्ली से प्रकाशित हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों में केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज होने वाले चुनावों, मॉनसून के देरी में आने की खबर को जगह दी गई है। साथ ही एक खास तस्वीर है जो लगभग सभी अखबारों ने छापी है। तस्वीर में एक स्लेटी रंग की टी शर्ट पहने मोदी अपनी माँ को बागीचे की सैर करा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी की माँ हीराबेन साथ रेसकोर्स रोड पर अपने बेटे से मिलने आई थी। दैनिक जागरण ने इस तस्वीर को छाप कर नीचे लिखा है, ममता की छाओं में। तस्वीर पर जनसत्ता ने कहा है, मेरे पास माँ है। नई दुनिया का कहना है, तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, पहली बार माँ आई तो बेटे ने दिखाया ऐसा है पीएम हाउस। अमर उजाला को देखें तो तस्वीर के नीचे लिखा है, माँ को मोदी ने कराई बगीचे की सैर। अंग्रेजी के दी इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, हिज डे विथ मदर। अब आपको अन्य खबरों के बारे में बता दूं। अंग्रेजी के दी इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है कि किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने जिन बैंकों से कर्जा लिया था उनके सामने उन्होंने नई पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि वे भारत आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा और आज़ादी का वादा चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत में ही बने देसी स्पेस शटल की तस्वीर छापकर कहा है कि भारत नासा के मुकाबले उपग्रह प्रक्षेपण को 10 गुना तक सस्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। यह स्पेस शटल इसरो ने बनाया है और इसका परीक्षण इस साल मॉनसून से पहले करना चाहता है। दी हिंदू के पहले पन्ने पर एक खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में सेना की एक इन्फेंट्री यूनिट में सैनिकों और अफसरों के बीच मारपीट हो गई। मामले को सैन्य बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। डोमिनिक गणतंत्र में कल हुए राष्ट्रपति चुनावों में कुछ मतदान केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदान एक घंटे देरी से खत्म हुआ। मतदान के पहले दौर में मौजूदा राष्ट्रपति डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी के डानिलो मदीना के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाकों की जांच और NIA के साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने दखल दिया है। नेपाल में नए संविधान के विरोध में अल्पसंख्यक मधेसी समुदाय के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।